बहुत। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे, स्नेह प्यार से बाबा हमने बांधी है जीवन डोर, तो बाबा के साथ हमने जीवन डोर बांधी है ना, उसका आधार है स्नेह प्यार, यही डोर है। स्नेह प्यार के धागे से हमने बाबा को अपने जीवन में बांध लिया, ऐसे कहें, या बाबा ने हमें अपने हमको बांध लिया, तो ये बंधन कितना प्यारा है। जिस बंधन के द्वारा बाकी सब बंधन समाप्त हो जाते हैं और हम सब बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हो जाते हैं, और जिसने भगवान का दिल तख्त जीता उसको और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में तो कितनी निराशा है, हताशा है, डिप्रेशन है, चारों ओर से आवाज आ रही है, भविष्य उनका जैसे अंधकारमय है, उनको ये नहीं सूझ रहा है कि वो क्या करे क्या न करे, ऐसी स्थिति दुनिया की हो रही है। लेकिन हम बाबा के बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते, सदा खुशी और मौज में रहते, सदा आनंद का अनुभव करते, नशे में रहते। क्यों? क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी बाप ने हमें भविष्य बता दिया है, नई दुनिया आनी है। बाबा कहते हैं बस उस नई दुनिया के नजारे देखो, और इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। अगर इस दुनिया को देखेंगे तो सारी जो नेगेटिव बातें बताई वो दिखाई देगी और वो ही सोचेंगे, पर इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो और भविष्य के नजारे देखो, वो हमारी नई दुनिया कैसी होगी, सत्युग कैसा होगा। आज भी बाबा ने कहा न रंग रंगीली दुनिया, वो रंग रंगीली दुनिया कैसी होगी। तो जब हम ये सोचेंगे तो ये दुनिया हमको सहज भूल जाएगी, और सहज ही बेहद का वैराग्य आएगा। हमारा यह बेहद का वैराग्य कोई शमशानी वैराग्य नहीं है। दुनिया में तो शमशानी वैराग्य आता है ना, क्या होगा क्या होगा, तो बस अभी तो कुछ नहीं, होपलेस केस हो जाता है। तो ये शमशानी वैराग्य तो थोड़े समय का होता है, और फिर जब स्थिति सुधर जाती है तो ये वैराग्य सब खत्म हो जाता है। शमशानी वैराग्य क्या होता है, जब किसी डेड बॉडी को ले जाते शमशान घाट पर तो अंदर में क्या आता है, देखो इतना बड़ा आदमी, कितना धनवान, क्या नहीं इसके पास था, धन माल संपत्ति वैभव मकान जमीन जायदाद क्या नहीं था, लेकिन सब यही रह गया, क्या ले गया क्या ले गया। तो इतने तक ही नहीं मन सोचता, इनसे आगे क्या सोचता है, अब ये तो कुछ नहीं ले गया और हम भी क्या ले जाएंगे, हम भी इतना जो कुछ कर रहे हैं, हम भी तो कुछ नहीं ले जाएंगे, तो हम भी कुछ नहीं ले जाएंगे, बस यहाँ तक उस समय बुद्धि सीमित होती है। और जब संस्कार कर चुके होते हैं और वापस आते हैं तो बुद्धि कैसे बदल जाती है, वो तो कुछ लेके नहीं गया, हम भी कुछ लेके नहीं जाएंगे, ये बदल जाता है। और क्या सोचने लगते हैं, चलो वो तो चला गया, वो तो नहीं वापस नहीं आएगा, पर हम तो है ना, हम तो जिंदा है ना, अभी हमको तो चाहिए ना, तो कैसे भी करके उसकी प्रॉपर्टी या जो कुछ उसका उसके पास था उसको हब करने की कोशिश करते हैं, जब्त करने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे कोई भी तरीका अपनाए, साम दाम दंड भेद या जो कुछ भी तरीके, छल कपट बेईमानी करके दूसरे की संपत्ति को जब्त करें, तो वो कहाँ गया वैराग्य कि हम भी तो कुछ नहीं लेके जाएंगे, वो उस समय तक का ही था, उसको कहते हैं शमशानी वैराग्य। पर हमारा है बेहद का वैराग्य, तो बेहद का वैराग्य कैसे आए, बाबा उसके लिए हर मुरली में कोई न कोई युक्ति तो बताते ही रहते, हर मुरली में कोई न कोई ऐसी बातें बाबा बताते हैं जिससे बेहद का वैराग्य आता है। तो कैसे आता है, हम देखते हैं दुनिया में किसी को किसी बात से वैराग्य कब आता है, जब हम उसको इतना प्यार देते हैं कि उसको बाकी सब बातें भूल जाती है, इतना प्यार देते हैं। तो जितना प्यार किससे मिलता जाएगा, तो जो दूसरा है जिसके प्रति थोड़ा था प्यार, उससे बुद्धि हटती जाएगी, हटेगी ना, क्योंकि उससे ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो भगवान भी हमको कितना प्यार देते हैं, आप सोचो, शुरू से लेकर बाबा ने प्यार से चलाया है बच्चों को। मुझे याद है एक बार दादी जी के पास कोई भाई गया और दादी जी को ऐसे कह रहा था, किसी ने कुछ ऐसा कुछ काल गलत किया होगा, कुछ छोटी मोटी बातें तो होती थी, तो भी दादी ने उसको सहज माफ कर दिया, ठीक है अच्छा फिर आगे नहीं करना। लेकिन उस व्यक्ति ने दादी जी को कहा, दादी आपको तो लव तो देना है पर लॉ भी रखना है, लव और लॉ का बैलेंस बाबा कहते हैं, तो लव और लॉ का बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। तो दादी ने कहा, नहीं ये परिवार है, यहाँ हम लॉ नहीं चला सकते हैं, लेकिन इस ईश्वरीय परिवार में लव ही लॉ है, लव ही लॉ है, प्यार से ही चलाना है। देखो बाबा भी क्या कहते हैं मुरलियों में, अगर कोई ऐसी गलती करता है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। कई बार बाबा कहते हैं ना, लॉ को हाथ में नहीं उठाना है, अपने आप उसकी बुद्धि उसके पैर पीछे जाएंगे, अपने आप हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कर्म तो उसके साथ है ही हैं। तो इसीलिए परिवार माना प्रेम। और बाबा ने हमें कैसे आकर्षित किया, शुरू में कैसे आकर्षित किया, इतने सब भाग कर आए, कैसे भाग के आए, ज्ञान तो कुछ था नहीं, एक तो साक्षात्कार और दूसरा इतना प्यार दिया जो दुनिया भूल गई, सुध-बुध भूल गई दुनिया, दुनिया भी कोई चीज होती है वो सब भूल गया, और 14 साल तपस्या कराई। और इतने हद तक उसमें व्यक्त उसमें लिप्त थे कहीं या उसमें व्यस्त थे, जो यही सोच लिया कि अभी तो बाहर जाना ही नहीं है, दुनिया देखनी नहीं है, दुनिया क्या है ये सोचना भी नहीं है, बस ऐसे ही हम ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही बाबा को याद करते रहेंगे और ऐसे ही विनाश हो जाएगा और हम सब चले जाएंगे बस सहज। ये थोड़ी पता था कि इतनी सेवाएं होगी, इतने सेंटर खुलेंगे। और बाबा भी कहते थे, बच्चे बाबा और मम्मा हम सब परिवार साथ है, साथ में ही जाएंगे। तो सबने ये सोच लिया कि साथ है, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, तो बाबा मम्मा कभी शरीर नहीं छोड़ेंगे, सब साथ में ही होंगे, कोई नहीं जाएगा, ये सोच लिया था। और कोई सेवा करना ये भी नहीं सोचा था, बस ऐसे ही जितने हम हैं सब यहीं रहेंगे। लेकिन कैसे परिस्थितियां बदली, भारत में आए और फिर उसके बाद सेवाएं शुरू हुई। और जब सेवाएं शुरू हुई तो माउंट आबू की जो मौसम थी वो कोई उनके अनुकूल नहीं थी, क्योंकि कराची तो गर्म शहर और माउंट आबू में या तो एकदम बरसात, जैसे अभी बारिश पड़ी ना दो दिन, एक दिन भी सूरज दिखाई नहीं दे, बस महीना अगस्त का महीना तो मंथ ऑफ डिस्गस्ट कहते थे, एकदम कुछ भी नहीं सूखता था, कपड़े ही नहीं सूखते थे पूरा महीना। और ये अभी जो साधन है वो कुछ नहीं थे, तो बाबा को कहते थे, बाबा हम कहाँ गए हैं, क्या ऐसे ही रहना होगा इस प्रकार, और वहां से तो कहते जाना ही नहीं है, पर यहाँ आए तो परिस्थितियां बदल गई। फिर ठंडी जब शुरू हुई तो इतनी ठंडी जो बात मत पूछो, तो या तो एकदम ठंडी या तो एकदम बारिश। और अगर कोई अच्छे महीने होते थे, मौसम अच्छा सुहावना, तो खाली अप्रैल मई और जून, बस जुलाई अगस्त सितंबर खूब बारिश और अक्टूबर से ठंडी चालू, और फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी थोड़ा मार्च जरा सा, जैसे अभी है, लेकिन उस समय सब एक्सट्रीम था, केवल 3 महीना सुहावना होता था बस। तो बाबा हम कहाँ गए, लेकिन बाबा उनको आश्वासन देते थे, बच्चे देखना आगे चल करके ये जो माउंट आबू है ना, ये सबसे सुरक्षित स्थान होगा, सबसे सुरक्षित स्थान होगा, एक तो ये, दूसरा सारी दुनिया यहाँ आएगी। बच्चे थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो, बाबा सबको धीरज बंधाते थे। तो सारी दुनिया यहाँ आएगी, सबसे सुरक्षित स्थान होगा, और उसके लिए मकान बनाने ये करना, उस समय तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जंगल ही था माउंट आबू, बिल्कुल जंगल। उस समय जब आए थे तो मुझे बताया था किसी ने, उस समय केवल 20,000 लोगों की आबादी थी या माउंट आबू में, 20,000 भी नहीं, 10,000, क्योंकि और कुछ नहीं था, भील लोग ही रहते थे, इसलिए बाबा भीलों को बहुत याद करते हैं ना, भील लोग ही थे। कुछ स्कूल्स थे, कॉन्वेंट स्कूल्स, क्रिश्चियन स्कूल्स थे, यहाँ हिल स्टेशन पर होते हैं, ये जो अभी CRP है या ये एयरफोर्स आर्मी कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबा ने ये कहा था। और अभी देखो कितना सुरक्षित स्थान, पुलिस फोर्स आर्मी एयरफोर्स सारा मिलिट्री, आप देखो ये उनका पीस पीरियड यहाँ आते, ट्रेनिंग लेते यहाँ माउंट आबू में, कितना सुरक्षित स्थान है में हम बैठे हैं। तो आप सोचो उस समय बाबा ने कहा था, आप लेकिन लग नहीं रहा था, परंतु अभी हम देख रहे हैं। तो इसीलिए समय तो बदलता है, लेकिन समय प्रमाण हम कितना बदले हैं वो हमें देखना है। हम वही पहले वाली बातें, पुरानी बातें याद करते रहेंगे तो हम तो नहीं बदल सकेंगे। तो परंतु भगवान ने हमको कितना प्यार दिया है, उस प्यार के कारण हम सहज वैराग्य ला सके दुनिया से। और इतनी बाबा हम बच्चों का सम्मान बढ़ाते हैं, हमें कितने टाइटल देते हैं, कोई और तो दे दे हमें, ये भी कितना बड़ा प्यार है। तो उसके खातिर दुनिया को त्यागना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। परंतु अभी भी फिर भी अगर आकर्षित होते हैं तो जरूर वो भगवान के महावाक्य पर जो निश्चय होना चाहिए वो नहीं है, या ये तो यही सोचे पता नहीं बाबा तो कहते हैं पर मैं कहाँ इसके लायक हूँ, मैं कहाँ इसके काबिल हूँ, है ना? इतना बाबा इतने टाइटल देते हैं, कई समझ से मैं तो इसके योग्य हूँ ही नहीं। कहते ना हम जब नयों को योग कराते हैं और कलो कमेंट्री भी कराते हैं और उसमें कहते हैं मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो कई लोग कहते नहीं लोग बहन जी मैं तो पवित्र आत्मा हूँ नहीं मेरे अंदर तो शांति है नहीं, मैं कैसे समझूं मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे अंदर ये गुण है ही नहीं। इतने अपने आप को हीन समझते हैं, है? फिर हम कहते कि अच्छा अगर आप पवित्रता पसंद करते हो, कहते हाँ। शांति पसंद करते हो, कहते हाँ। तो अगर ये पसंद करते हो और चाहते हो तो कैसे अनुभव करेंगे, कहाँ से लाएंगे? तो कहते बाबा हमें देगा। हाँ बाबा देगा। बाबा कैसे देगा, कोई छप्पर फाड़ के थोड़ी ऐसे देगा कि तुम पवित्र आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि चाहते हो इससे सिद्ध है कि आप थे, नहीं तो चाहना ही क्यों रखेंगे। चाहते हो इसका मतलब आप फिर से हो सकते हो, ऐसे ही थोड़ी चाहना होती है। तो चाहते हो माना थे और फिर से हो सकते हैं, तो कैसे थे और कैसे हो सकते हैं? तो थे तो वो स्मृति लाओ, हम थे, और फिर कैसे हो सकते हैं उसका उपाय क्या है, वो सोच कर, वो पहले आपके अंदर वो सोच हो मैं हूं, थे और होंगे उसके बीच का है हूं, हूं तभी तो होंगे, नहीं तो कैसे होंगे। और इसलिए बाबा कहते हैं तुम जो हो सचमुच उसका चिंतन करो, जो आप चाहते हो उसका चिंतन करो, तो सोचेंगे वही अनुभव करेंगे, क्योंकि ये तो मन की स्थिति है। मन की स्थिति है सारे ये गुण, ये आत्मा का मूल स्वभाव है। तो इसीलिए बाबा हमको उसके लिए जो स्वमान देते ये हमारे अंदर आत्मिक प्यार, ईश्वरीय प्यार जागृत कराते हैं, और वही हमारा आधार है बिल्कुल। तब वैराग्य सहज आ जाता है दुनिया से। एक कुमारी होती है ससुराल घर जाती है तो माँ बाप उसको क्या कहते हैं, वो गीत भी है ना, कि इतना प्यार मिले तुम्हें उस वहां ससुराल में जो तुम मायका भूल जाओ। तो भगवान के घर में जब इतना प्यार मिले तब तो हम दुनिया को भूले, भगवान से जब इतना प्यार मिले तब तो हम औरों को भूले। तो सबसे पहला कदम है बेहद के वैराग्य का, वो है भगवान का प्यार, और वो भी निस्वार्थ प्यार। बाबा से हम, बाबा को हमने दिया क्या है, कुछ भी नहीं, पर लिया कितना है, ये कितना बड़ा निस्वार्थ प्यार है भगवान का हम बच्चों के लिए। दिया तो कुछ भी नहीं है, क्या दिया है, कितना लाए होंगे आप लोग, क्या लाए होंगे, कुछ भी नहीं। सचमुच कोई कहे ना मैंने तो 10 लाख दिया, अब रोज का कितना खर्चा है एक एक व्यक्ति का, 10 लाख क्या है? 10 लाख एक हाँ क्या है? कुछ भी नहीं है, सारा जीवन। तो बेहद का वैराग्य आने लिए सबसे पहले चाहिए हाँ, ये अनुभव हो कि भगवान का हमको कितना प्यार मिल रहा है। और दूसरा, बेहद का वैराग्य तब सहज आएगा जब हर वक्त हमको भविष्य याद होगा, भविष्य याद होगा, हम क्या बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए देखो, हर मुरली में बाबा हमको सतयुग की कितनी याद दिला रहा है। दुनिया में इतना जो निराशा है वो इसलिए ही है क्योंकि भविष्य अंधकार में है, उनको नहीं मालूम भविष्य का। लेकिन हमें तो पता है, आज भी बाबा ने कहा, बच्चे ये विनाश कितना कल्याणकारी होगा क्योंकि इससे तुम्हारे लिए नई दुनिया आएगी। नई दुनिया आएगी तो अगर वो सदा स्मृति में रहे तो पुरानी दुनिया भूलना बहुत सहज है। तो कोई भी बात का त्याग तब हो जब पहले वैराग्य हो, और वो पुरानी चीज का वैराग्य भी तब आए जब कुछ नया मिलना है ये पता हो। जैसे छोटे बच्चे को कोई हाथ में चीज है, अब वो चीज ठीक नहीं है, अब बच्चे को तो नहीं मालूम, वो तो समझता ये तो मेरे लिए मेरी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन माँ उसको क्या कहेगी? पहले तो कहेगी, बेटा ये छीछी है। अब छीछी है लेकिन अभी वही पकड़ना है, वही चाहिए। फिर माँ कहेगी, देखो मैं तुमको ये दूसरी चीज दे रही हूँ, हाँ ये लो, ये बहुत अच्छी है और ये छीछी है। तो भेद करेगा वो बच्चा, ये अच्छी है या वो अच्छी है, ये अच्छी है या वो अच्छी है, दोनों को देखेगा। अब वो अच्छी लेनी है तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो बाबा भी हमको जब नई दुनिया की बातें कहते हैं, क्या सचमुच हम उसके चिंतन में जाते हैं? जाते हैं चिंतन में, हाँ ये कैसी दुनिया होगी, सोचो तो सही क्या क्या होगा। चले जाओ उसकी गहराई में, आनंद आएगा आपको। और ऐसे नहीं कि बाबा ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही बाबा नहीं कह रहे हैं, भगवान सत्य है, तो सत्य है तो सत्य बातें ही सुनाएगा। ऐसे नहीं कि सत्य बातें नहीं केवल हमको लुभाने के लिए ही सुना रहा है, नहीं। तो अगर बाबा में पूरा निश्चय है और उनके एक एक बोल में निश्चय है तो हमें तो वो सामने दिखाई देना ही चाहिए। इसमें बाबा कितने मिसाल देते हैं, स्टूडेंट पढ़ रहा है, लॉ पढ़ रहा है, मेडिकल लाइन पढ़ रहा है, पहले सोच लेता है मैं क्या करूंगा जब ये डिग्री मिलेगी, क्या करूंगा, ये क्या करूंगा, मकान बनाऊंगा, ये करूंगा, कितना सोच लेता है। भले उस समय लगता है हवाई किले पर, उनको विश्वास है ना कि मैं पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लूंगा और मेरी को ये डिग्री मिलेगी, मुझे जरूर नौकरी मिलेगी, अच्छा मैं खुद अपना बिजनेस करूंगा, जो भी। तो अपना भविष्य पहले सोच लेता है वहां, तो चलो वो सोचता है। लेकिन या तो भगवान हमें कह रहे हैं, हमें सोचने की अपने आप जरूरत नहीं है, भगवान हमें वो सोच दे रहे हैं। तो जब हम उस भविष्य को याद करते, इस दुनिया से वैराग लाना बड़ी बात नहीं है। और तीसरी बात, बाबा कहते सहज कैसे वैराग आएगा, बाबा हमें धर्मराजपुरी की याद भी दिलाते हैं। ऐसे नहीं धर्मराजपुरी की याद नहीं दिलाते हैं, भगवान का राइट हैंड है धर्मराज। क्योंकि अगर वैराग्य नहीं है इसका मतलब विकारों में लिप्त है। दुनिया में तो ऐसा ही है ना, विकारों में लिप्त है, कहाँ वैराग है। वो तो शमशानी वैराग चलो आ गया, जाना चाहते हैं क्लब में, जाना चाहते हैं सिनेमा घर में, जाना चाहते हैं बड़े बड़े होटलों में, लेकिन क्या करें, यहाँ लॉकडाउन है क्या करें, कैसे जाएं, कैसे जाएं, फिर पैसे की तंगी है, कैसे जाएं। माना ये शमशानी वैराग है, ये बस खुले तो हम जाएं, हा? खुली तो हम जाएं, क्योंकि आकर्षण है। परंतु भगवान ने हमें पद खुले तो जाएं, तो फिर दुनिया में जाएंगे तो क्या है, माया है, विकारों की दुनिया है। मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ ना, मेरे लौकिक भाई जो थे वो अमेरिका में थे, तो हम यहाँ भारत में पढ़ाई तो कर रहे थे, वो अमेरिका में पढ़ाई करके गए, वहां उनको अच्छी जॉब मिली, तो मुझे बुला रहे थे, तुम अमेरिका आओ, मैं तुमको यहाँ पढ़ाऊंगा। तो मैंने मना किया, मैं नहीं जाऊंगी अमेरिका, अमेरिका मायावी नगरी है, माया माया माया। मैं ज्ञान में तो थी, बचपन से ज्ञान में हूँ, 10 साल की उम्र भी मुश्किल होगी, वहां माया है। तो माया से मुझे वैराग है, इसलिए मुझे अमेरिका आके नहीं पढ़ना है। तो मेरी जो लौकिक बुआ थी, उनके पास ही पलती थी, तो वो मुझे एक ज्योतिषी के पास ले गई कि इसका भाई उसको बुला रहा अमेरिका, ये जा नहीं रही है, कितना उसको बुला रहा है, टिकट भी दे रहा है, ये नहीं जाना चाहती है, कॉलेज पढ़ती थी उस समय, तो ये नहीं जा रही है, आप देखो इसका भविष्य क्या है। उस समय तो मैं 18-19 साल की थी, तो उसने मेरा हाथ देखा, कहता है इसका भविष्य तो बहुत उज्जवल है, अरे ये तो अनेक बार जाएगी विदेश, और यहाँ तो मैं कहती हूँ माया है माया है, पर उस समय थोड़ी ये पता था कि बाबा हमको विदेश भेजेगा, हमको ये था माया है, नहीं जाना है नहीं जाना है, ये तो अनेक बार जाएगी, इसकी यात्रा की जो लाइन है ये बहुत लंबी है, पर हम तो हंस दिए। फिर उसने कहा कि ये सुनती नहीं है हमारा, हम इसको कहते हैं और पढ़ो चलो, क्योंकि मेडिकल के लिए बोल रहा था, कई बातें बोल रहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं है, अमेरिका जाना है ना पढ़ना, आगे कुछ नहीं करना, मुझे बाबा की सेवा करनी है। तो वो कहता है ज्योतिषी, ये तो बहुत डिग्रियां लेगी, बहुत डिग्रियां लेगी। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बाबा कहते हैं मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर तो मास्टर प्रेम सागर, कितने सब मास्टर ही तो है, एमएससी एमएससी या एमकॉम या जो भी है मास्टर है ना, तो हम तो बन गए मास्टर, पहले से ही मास्टर है ना, तो कितनी डिग्रियां हम ले रहे हैं, हम कोई कम डिग्रियां ले रहे हैं क्या, तो हमको तो बहुत डिग्रियां है। तो जब कहा कि बहुत डिग्रियां लेगी, तो हम अंदर ही अंदर सोच रहे हैं वाह बाबा हम तो बहुत डिग्रियां, वैसे ही बाबा ही दे रहे हैं हमें डिग्रियां। फिर कहा कि ये कहती शादी नहीं करूंगी, तो कितना इसको कहते तुम 18 साल की तो हो गई, अच्छा तुम और नहीं शादी कर लो। तो हमने तो उसने फिर देखा कहा इसका जो पति है ना, इसको इतना सुख देगा, इतना सुख देगा बात मत पूछो, बहुत सुख देगा, ये बहुत सुखी है, बहुत सुखी रहेगी, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, बहुत सुखी रहेगी। तो हमने अंदर में सोचा देखो भगवान की गोद में हम अगर जाएंगे तो कितनी सुखी होंगी, पता नहीं लौकिक दुनिया में कौन सा पति मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन क्या होगा। तो भगवान अगर पतियों का पति हमें मिल जाए, हमको और क्या चाहिए, क्यों नहीं सुखी रहूंगी। तो फिर कहा कि अच्छा तुम या तो तुम नौकरी करो। तो बाबा की मुरली में आया कि नौकरी तो टोकरी है उनका नौकरी क्यों करेंगे, हम भगवान के बच्चे हैं, हम तो शहनशाह के बच्चे, हम नौकरी क्यों करेंगे। तो मतलब कोई भी बात उनको वो कहती थी हम मानते नहीं थे। और वो जो ज्योतिषी था वो मेरी फिर आखिर फिर मैंने इसको ज्ञान देना शुरू कर दिया, तो ज्योतिषी को ज्ञान देना शुरू कर दिया, इतना उसको नशे में चढ़ गई और उसको ज्ञान दिया, वो सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। फिर आखिर मेरी बुआ को कहता है कि माता जी इनको कुछ मत कहो, ये बहुत आध्यात्मिक बहन स्त्री है या जो भी, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये अनेकों को मार्ग दिखाएगी, अनेकों का जीवन संवारेगी, आपको भी आगे बढ़ाएगी, आपको भी, आपके लिए भी मार्गदर्शक बनेगी। यहां तक उसको कह दिया, आप इनको कुछ मत कहो, ये जो कह रही ना कर रही आप उसी अनुसार चलो। तो ज्योतिष ही नहीं, उनको ये ज्ञान दिया, मतलब समझ दी। उसके बाद तो कितनी बदल गई वो, एकदम बदल गई। और बचपन में, क्योंकि वो भाई मेरा जो अमेरिका गया, वो बहुत प्यार करता था मेरे को, बहुत उसके मेरे प्रति बहुत आकांक्षाएं थी, तो इसीलिए। और वो जब देखा कि ब्रह्मा कुमारियों में जाती है तो उसको अच्छा नहीं लगा। हाँ, अच्छा नहीं लगा तो एक दिन उसने मुझे मारा भी, थप्पड़ भी मारी। तो जैसे क्योंकि उसने मुझे देख लिया, सेंटर पर जाती हूँ मैं, बहाने देती थी, लाइब्रेरी जाती हूँ, फ्रेंड के पास जाती हूँ, पढ़ने जाती हूँ, ऐसे चला। पर उसने एक दिन देख लिया, सेंटर दूर नहीं था, तो देख लिया। जब मैं वापस गई, तब मैं शायद 12-13 साल की थी, तो जब वापस आई तो उसने मुझे बहुत मारा, थप्पड़ मारी जोर से। और उसी दिन बाबा की मुरली हमने सुनी थी, बच्ची तुम पवित्र, मतलब तुम पवित्र कन्याई हो, तुम पर कोई हाथ नहीं चला सकता है, ये बहुत बड़ा पाप है अगर पवित्र कन्या पर हाथ चलाया तो। अब वो मुरली सुन के आई थी मैं, तो जब इसने मुझे मारा तो मैंने कहा पापी कहीं का इतना अंदर में गुस्सा आया, पापी कहीं का, तुम पर बहुत पाप चढ़ेगा, तुमने पवित्र कन्या को हाथ लगाया, मतलब इस प्रकार से हाथ चलाया, तुम पर बहुत पाप चढ़ेगा। तो जैसे मैंने, जैसे काली हो गई मैं एकदम शक्ति, और उस समय बेचारा कांपने लगा तो उसके बाद फिर तो वो बहुत बहुत प्यार देता रहा बहुत। और इसलिए कहा ना अमेरिका हो, लेकिन अमेरिका नहीं जाना हमको कहीं भी। पर देखो जी जी नहीं नहीं अभी तो शरीर छोड़ दिया उसने, अमेरिका में शरीर छोड़ा, वहां का ही बन गया था। मैं जब गई थी अमेरिका पहली बार में गई थी 2000 में, तब वो आया था वहाँ, पीस विलेज है ना जहाँ ये न्यूयॉर्क के पास, वहाँ वो बड़ा इंजीनियर था और बहुत सारा उसने बिल्डिंग्स बनाई थी, मतलब वहीं का हो गया था। फिर शायद 3-4 साल के बाद गुजर गया। फिर मैं बीच में गई थी तो उनकी वाइफ भी मिलने आई थी, उनके बच्चे मिलने आए थे, तो सब पर उनकी डेथ हो गई थी। तो वो उनकी वाइफ आई थी ज्ञान में, तब वो वॉशिंगटन में था, वॉशिंगटन में उसका परिवार था, तो वो मिलने के लिए आई थी, सेंटर पर भी आई थी। वो जैना बहन है वहाँ, उनसे कांटेक्ट करवाया, फिर पता नहीं जाती या नहीं, परंतु वो नहीं आया कभी, पर वो उनकी वाइफ सेंटर पर जरूर आई थी। वहीं पर उसने शादी कर ली, इंडियन से ही शादी की, लेकिन वहीं फिर बस गया। तो ये ड्रामा है। तो देखो बाबा ने उसके बाद तो कितनी बार भेजा, भगवान के कार्य में के लिए गए। तो यानी कहने का भाव है कि बस अंदर में तैराग इतना, जो बात मत पूछो, और भगवान जो कह रहे उस पर चलना है। आज मेरे को किसने कहा, मैंने सवेरे बताया ना मुरली क्लास में, कि कई बहुत निराश हो गए हैं, क्या होगा क्या होगा, तो हम उनको कहते नहीं बहुत अच्छा होगा और बाबा की सेवा बहुत बढ़ेगी, बहुत आएंगे। तो किसने मेरे से आज ही पूछा सुबह कि ये कौन से मुरली में ऐसे आया है, या कौन से बाबा का जो ये संदेश है उसमें आया है कि इस कोरोना के बाद सेवा बहुत बढ़ेगी, कौन से किसने संदेश भेजा है क्या, या कौन से मुरली में आया है। तो हमने कहा मुरली में आए या संदेश में, ये मुरली तो कब चली थी उस समय बाबा की, ये भी उस समय भी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत टेंशन था दुनिया में। और बाबा से पूछा था, मैंने बताया बाबा से पूछा था उस समय जब इतने लाखों लोग मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लाखों हजारों नहीं, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ वो तब हुआ जब बाबा का यज्ञ ये कराची में था, 1939 से 1945 तक, 39 to 45, 6 साल दूसरा विश्व युद्ध चला और लाखों लोग मारे गए थे। तब बाबा से पूछा था, बाबा ये इतना सारा विनाश हो रहा है तो क्या यही विनाश है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तो रिहर्सल है, ये रिहर्सल है, फिर उस समय जो फिर हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब हुआ गिरा, तो भी बाबा से पूछा, बाबा यही विनाश है? बाबा ने कहा नहीं, ये रिहर्सल है, अभी तो शुरुआत है। फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, मतलब बीच में जो पार्टीशन हुई, उसमें भी लाखों लोग मारे गए थे। ऐसे नहीं कि ऐसे ही पार्टीशन सहज हो गया, शांति से अंग्रेज चले गए, नहीं, बहुत युद्ध, सिविल वॉर हुआ था। हिंदू भी कत्लेआम, मुसलमान भी कत्लेआम, न जाने क्या क्या किया था, ट्रेन की ट्रेन ऐसे खत्म किए थे दोनों तरफ, बहुत बुरा हाल था। तभी भी बाबा ने बाबा से पूछा, बाबा ये विनाश है? बाबा ने कहा ये रिहर्सल है। और उसी समय 1946-47 की बात होगी, क्वेटा एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, क्वेटा नाम सुना होगा। उस समय इतना जबरदस्त भूकंप आया था, पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया था उस भूकंप में, सारा शहर। मेरे भी कुछ लौकिक रिश्तेदार थे, मेरी लौकिक माँ बताती थी, नानी बताती थी, वो भी कराची में रहते थे, तो कैसे वो पूरा का पूरा क्वेटा खत्म हो गया। तो तभी भी बाबा से पूछते, बाबा इतना बड़ा भूकंप आया, इतने लोग मर गए, क्या ये विनाश है? बाबा कितने रिहर्सल है, रिहर्सल है, तो रिहर्सल है, रिहर्सल है, विनाश फाइनल से पहले रिहर्सल होती है ना, तो ये सब रिहर्सल है। तो अभी क्या है, अभी भी रिहर्सल ही है ना, तो इसके बाद क्या होगा, क्या होगा? बाबा की सेवा इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, देखना। ममा अव्यक्त हुई, ममा अव्यक्त हुई, समझा बस अभी पूरा हुआ, कितनी सेवाएं बढ़ी। बाबा अव्यक्त हुए, कितनी सेवाएं बढ़ी। अब अव्यक्त बाप दादा का पाठ भी देखो, 50 साल तक चला, कोई कम थोड़ी चला अव्यक्त बाप दादा का पाठ। लेकिन और अभी ये कोरोना जो भी है, आप क्या समझते हो, खत्म हो गया, पूरी हो गई सेवा? क्या समझते हो, क्या समझते हो? बढ़ेगी ना, खत्म हो जाएगा ये कोरोना वरोना, कुछ नहीं रहना है, हो जाएगा खत्म जरूर। और जो भगवान के महावाक्य मुरलियों में है, वो सब सिद्ध होने कि नहीं? बच्चे तुम्हारे आगे क्यों लगेगी, तुम कैसे यही है यही है यही है सब कहेंगे, तुम वी आई पी होंगे, आपको लोग बुलाएंगे, ये सब कब होगा? अभी तो हम बुलाते हैं उनको। जी जी, आबू सब तुम्हारा हो जाएगा, क्यों लगेगी, ये सब होगा ना, क्यों नहीं होगा, जो बाबा हमें कह रहे हैं। फिर कर्मातीत अवस्था को पाना, कहाँ कर्मातीत अवस्था अभी तक हुई है? तो ये सब होना है ना कि नहीं होना, इतना भगवान के माँ वाक्य कोई व्यर्थ थोड़ी कहेंगे। भगवान ने कहा ये, कोई ब्रह्मा बाबा ने थोड़ी कहा, तो शिव बाबा ने कहा। तो जब ये भगवान के महावाक्य अभी आने हैं, तो जरूर हमें वो निश्चय है कि सेवाएं बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। अभी ये शांति का पीरियड हमें मिला है, ताकि हम इतनी अपने अंदर तपस्या करके अपने अंदर इतना भरे इतना भरे इतना भरे, जो आगे हमको समय नहीं मिलेगा अपने लिए। अपनी ऐसी तपस्या करे, स्टडी करे, और बातों में न जाए, सेवा करे, याद और सेवा में रहे, और दुनिया की बातें, इसकी बात उसकी बात, कोई जरूरत नहीं है समय को बर्बाद करने की। और पाप कर्मों से बचें, किसी को दुख न दें, बचें, क्योंकि ब्राह्मण बच्चे बने हैं तो एक भूल की 100 गुना सजा है, ये भी है। इसलिए कोई हमारे से ऐसा कर्म न हो जो किसी को दुख मिले मेरे से, ये भी जरा सोचो। कोई ऐसे मुख से शब्द न निकले जो एक तीर के समान किसको चुभे, ये भी पाप के खाते में जाएगा। किसको दुख देना वो तो है, तो दुख लेना जो बाबा कहते हैं। तो धर्मराज को याद करो, हर वक्त धर्मराज याद रहे, तो धर्मराज याद रहेगा तो वेद का वैराग्य आना भी सहज होगा, मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि डरेंगे ना, डरने का मतलब ये नहीं है कि डरा रहे हैं बाबा, क्योंकि होना है, सजाएं मिलनी है, बहुत कड़ी सजाएं हैं। उस दिन हम कहीं वो लेख कहीं पढ़ रहे थे कि लोग क्यों नहीं डर रहे हैं, पाप कर्म इतना करते हैं दुनिया में, क्या नहीं करते, हत्याएं हो रही है, चोरी चकारी डाका खून न जाने क्या क्या हो रहा है दुनिया में, तो ये क्यों नहीं लोग डर रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है क्या कर्म फिलॉसफी, पता क्यों नहीं होगी, सबको पता है कर्मों का ज्ञान, तो क्या नहीं जानते हैं लोग, लेकिन सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैराग्य कहाँ है। तो बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है और सजाओं का भी ज्ञान दिया है कि बहुत भारी सजा है, अभी नहीं पछता चल रहा है। कई लोग है ना जीवन में बहुत कुछ करते हैं लेकिन मौज कर रहे हैं, बहुत मौज कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं देखो ये कितना काले काम करता है तो भी मौज कर रहा है, लेकिन उसका अंत इतना बुरा होता है जो बात मत पूछो, कितना पश्चाताप वो जरूर करता होगा अंत में, क्योंकि उस समय तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन कहते ना ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो इसीलिए धर्मराज से भी डरना है जरूर, और ब्राह्मण होने के बाद समझ होने के बाद फिर कोई ऐसा कुछ करते हैं तो सजा बहुत ज्यादा भारी है। इसीलिए बाबा कहते कदम कदम पर संभल के चलना है। तो सहज बेहद का वैराग्य आ जाए अगर हम धर्मराज को भी याद करें तो ऑटोमेटिकली त्याग तो सहज हो ही जाता है। और जितना इस समय हम न्यारे प्यारे रहें, जिसको बाबा कहते छोड़ो तो छूटो, छोटी बात को बड़ा मत करो, समय कम है जरूर कम है। कई यहाँ तक कहते बाबा तो शुरू से कहते आए हैं समय कम है, लेकिन अभी तो 80 साल हो गया, 85 साल हो गया। लेकिन अगर शुरू में बाबा ये न कहते होते, विनाश बाबा शुरू से ही कहते आए ना, अगली दिवाली नहीं आएगी यहाँ तक बाबा कहते थे, उसके आधार पर ही तो सब बाबा के बने, अगली दिवाली नहीं आएगी और सब ऐसे ही चाहेंगे वापस, ना कुछ सोचा नहीं था, इसलिए सब सैर छोड़ छाड़ करके आ गए। अगर बाबा ये न कहते होते, एक बार मनोहर दादी इस पर क्लास करा रही थी, अगर ये बाबा न कहते होते हम थोड़ी आते हम थोड़ी आते भाई, 1976 में विनाश होगा, फिर विनाश तो हुआ नहीं, फिर कहा 2000 में विनाश तो हुआ नहीं। लेकिन ये भगवान को अपने बच्चे तैयार करने हैं, जड़े मजबूत है, तो इसीलिए झाड़ हिलेगा, बहुत हिलेगा, बाबा कहते हैं झाड़ हिलेगा, और जो कच्चे पत्ते हैं वो तो सब झड़ जाएंगे। शुरू में देखो आए सब, फिर कैसे बेगरी पार चला, बड़ी परीक्षा आई उस समय, जो कच्चे थे वो तो गए। बाबा मिसाल देते ना, कईयों को बाबा ने कहा बच्चे नहीं जाओ, बाबा हम नौकरी करके धंधा करके कमाएंगे, हम ले आएंगे यज्ञ में। बाबा कहते बच्चे जरूरत नहीं है, बाबा सावल शाह की हुंडी सकारेगा, आपको कोई चिंता नहीं करना है। नहीं बाबा, हम धंधा करके कमा करके आएंगे, बाबा को यज्ञ में देंगे। वो कमाने क्या गए, ओम शांति हो गए ओम शांति हो गए, माया ने पकड़ लिया। बाबा ने मना किया तो भी माने नहीं, फिर बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, पर बच्चे सावधान रहना, माया से बच के रहना। वो भी नहीं माना। मैं अभी कहा बीच में गई थी कुछ साल पहले, स्पेन गई थी, तो स्पेन में मैड्रिड शहर है जो राजधानी है स्पेन की, वहां हमको दो भाई मिले, ये दादी प्रकाशमणि की लौकिक बहन के बच्चे है, तो सब समर्पित हो गए थे, बच्चे सहित सब समर्पित हो गए थे। फिर यज्ञ से गए तो वो स्पेन में मैं सेंटर पर गई थी, वो कभी कभी आते हैं, तो बहुत बुजुर्ग है तो वो आए थे, तो अपना आप बीती बता रहे थे कैसे उनकी पत्नी से डाइवोर्स हुआ, उनके बच्चे चले गए, ये हुआ वो हुआ, सारे दुख दर्द। फिर याद किया बाबा के पास थे, कितना आनंद था, कितना ये था। लेकिन अभी उनको ज्ञान सुनाओ तो एक रत्ती भर भी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है, होगा ना, कैसे बुद्धि में बैठेगा। बस हम उनको अच्छी बातें सुनाए, वो अपना दुखड़ा ही सुना रहे। हम उनको ज्ञान की बात सुनाए तो फिर फलाने की बात वो सुनाए, फलाने की बात सुनाए। हम कहते थे दादा भूल जाओ ये सब बातें, बस अभी पहचानो अपने आप को, शिव बाबा को पहचानो। फिर कह नहीं, वो दिन तो बाबा के साथ बहुत अच्छे थे। फिर कहे मेरी पत्नी ऐसी मेरी तो वो जो वहाँ भाई है अपना जो सेंटर संभालता है, तो उसने मुझे कहा कि ये कभी कभी फोन करता है और फिर कभी कभी पूछता है कि आज बाबा ने क्या कहा। बस याद तो आता है ना, लेकिन बुद्धि को तो ताला लगा हुआ है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को सावधान भी करते हैं और बीच बीच में बहुत उमंग उत्साह भी दिलाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें कह करके नशा भी चढ़ाते हैं। ये सब भगवान के माँ वाक्य हम सुनते हैं, तो ऐसे नहीं कि कोई भगवान जो कहेगा वो सिद्ध नहीं होगा, होगा जरूर। तो इसीलिए इतना निश्चय बुद्धि हम बने कि ये जो कार्य चल रहा है ये ईश्वर का कार्य है, और जो भगवान कहते हैं हमें बिल्कुल एक्यूरेट उस पर चलना है, तभी भगवान का दिल जीत सकेंगे। ये तो पुण्य है जो इतना इस धरती पर हम हैं, इस मधुबन धरती पर। बहुत पिछला को अच्छा कर्म है और भाग्य अच्छा है, क्यों नहीं। लेकिन अभी हम कितना पुण्य जमा कर रहे हैं, क्योंकि यही साथ चलना है। खाया पिया सोया तो पुण्य जमा नहीं होता है, तो जितनी सेवा भी कर सके, जितना याद में रह सके, समय सफल करते जाएं, उतना हमारा भाग्य इतना ऊंचा बनता जाएगा। पास विद ऑनर बनना है बाबा ने आज का, तो इसीलिए इतना ऊंचा लक्ष्य रखें। तो बहुत अच्छी भट्टी चल रही है और अवश्य इस भट्टी के द्वारा हम अपना समय श्वास संकल्प शक्ति बहुत सफल कर रहे हैं और भी सफल करते रहेंगे। तो चाहे भट्टी न भी हो तो भी मधुबन में है तो यहाँ का इतना बड़ा भाग्य हम आत्माओं को है ये भूले नहीं। चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।